Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhidanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti ke kanakad mein anusyut nirakar paramatma aur usi nirakar paramatma ke साकार रूप में उपस्थित मेरे प्यारे श्रोता भाइयों और बहनों, कल हमने देखा यह जो आत्मा है जिसे हम जीवात्मा के नाम से भी जानते हैं, वह आत्मा है कैसा? तो कल हमने कठोपनिषद के मंत्र में देखा, उसका दर्शन सरलता से नहीं होता। अगर दर्शन सरलता से हो जाता, यानी चक्षु इंद्रिय से, श्रोत्रेंद्रिय से, या गुरु ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया या अंगूठा दबा दिया, अगर ऐसी नौबत आती तो ये शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी। सरल है, ये परंपरा की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उतना ही कहा होता, मेरे सामने बैठ जा, तेरे सिर के ऊपर हाथ रख देता हूं तो ये दर्शन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वेद व्यास जी ने भी ऐसा नहीं कहा, सुखदेव जी ने भी ऐसा नहीं कहा, अष्टावक्र जी ने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उपदेश दिया, यह जो आत्मा है वह दुर्दर्श इसलिए है, उसका दर्शन मुश्किल से इसलिए होता है क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए उसके अगले मंत्र में हमने देखा वह सूक्ष्मतम है। कल हमने दृष्टांत के तौर पे देखा था, यह नैपकिन हमको दिख रहा है लेकिन अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद जिसे कहते हैं वह दिखता नहीं है। सरल भाषा में कहे तो जिससे नैपकिन दिख रहा है, चक्षु इंद्रिय से, उसको भी सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला वह आत्मा है। और सरलता से समझे तो प्रकाश के अंदर सब कुछ दिख रहा है, ये कुर्सियां दिख रही है, माइक दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन प्रकाश दिखेगा नहीं। इसलिए यह आत्मा दूरदर्शन का, उतना ही नहीं वह गूढ़ भी है। फिर बाद में कहा गह्वरेष्ठम पुराणम, गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम। लेकिन वह आत्मा हम जान कैसे सकते हैं स्वामी जी, इतना गूढ़ है, इतना गह्वरेष्ठम है, इतना दूरदर्शन है, हम जान कैसे सकते हैं? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, संसार के अंदर आसक्त हो चुके हैं, कीचड़ वाली जमीन के अंदर हम फंस चुके हैं, उसका ही सहारा लेके हमको खड़ा होना है। जैसे मान लीजिए हम कीचड़ वाली जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं, हाथ देने वाला कोई नहीं है, पेड़ की टहनी भी नहीं है जिसे पकड़ के हम आ सके, हमको उठना है तो क्या करना पड़ेगा? कीचड़ वाली जमीन का सहारा लेकर ही खड़ा होना पड़ेगा। बस वैसी ही बात है, यह मन जो है संसार के विषयों में गलती से आसक्त हो चुका है, उसी मन के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जिस मन के द्वारा हम आसक्त हुए हैं उसी मन के द्वारा वैराग्य प्राप्ति कराकर हमें परमात्मा में वह मन को जोड़ देना है। इसलिए योग करना है मन का परमात्मा के साथ। इसलिए मंत्र में कहा अध्यात्म योग अधिगमेनम देवम मत्वा धीरह हर्ष शोको जहाति। परमात्मा को जान लेने के बाद उसका फल क्या है तो हर्ष और शोक दोनों उसके जीवन में आते तो है लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ये मंत्र कल हमने देखा था और आज यमराज और कुछ विशेष बात बतलाने जा रहे हैं। द्वितीय वल्ली कठोपनिषद मंत्र नंबर 13वां। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमे तमाप्य समोदते मोदनीयगम् हि लब्ध्वा विवृतगम् सद्म नचिकेतसं मन्ये। कह रहे हैं यमराज मनुष्य जब यह धर्ममय उपदेश सुनकर अच्छी तरह से ग्रहण करके और उसके ऊपर विवेक पूर्वक विचार करके यह सूक्ष्म आत्मतत्व को जान लेता है तब वह आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करके आनंद में ही मग्न हो जाता है। हे नचिकेता मैं आपको परम धाम के द्वार उघड़े हुए है आपके लिए ऐसा मैं मानता हूं, खुले हुए है ऐसा मैं मानता हूं। सबसे पहले मंत्र में शब्द आया मर्त्य। मर्त्य माने मरने वाला। शरीर पैदा हो चुका है सबका और उसमें एक घड़ी लगी हुई है। वह घड़ी चलती रहेगी टिक 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 करके। फिर एक दिन ऐसी आएगी नौबत कि टिक टिक नहीं सुनाई देगी। हमारे घर में भी घड़ी लगी रहती है। अब ये घड़ी चलती नहीं है, क्यों? बैटरी नहीं चल रही है। बस वैसी ही बात हमारी। यह शरीर तो पैदा हो चुका है और एक ना एक दिन समाप्त तो होने वाला है क्योंकि उसका स्वभाव है। अंग्रेजी में उनको एंट्रोपी कहते हैं, यानी पैदा हुआ उसके साथ में ही सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि वह नाश होने वाला है। यह मर्त्य शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसी आत्मा को यह मर्त्य शरीर के अंदर रहकर ही हमको जानना है। शरीर मर्त्य और शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वह अमर्त्य। जानना भी किससे है? यह शरीर से ही। हां, ऐसा नहीं कि बाहर अनुभव कर ले जाकर, ऐसा नहीं है। मर्त्य शरीर में रहकर ही यह आत्मतत्व हमको जानना है। इसलिए कहा मर्त्य यानी मनुष्य एतत् धर्म्यम श्रुत्वा। यह धर्ममय उपदेश सुनकर। धर्ममय क्यों कहा? धर्ममय इसीलिए कहा क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाला जो है वह आत्मा ही है। मेरे हाथ के ऊपर यह नैपकिन है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये नैपकिन को धारण करने वाला मेरा हाथ है। सरल है वह तो। लेकिन ये हाथ को धारण करने वाला कौन? यह शरीर। क्योंकि शरीर है तो ही हाथ है। हाथ को काट दिया फिर भी शरीर तो अवश्य रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह हाथ को धारण करने वाला यह शरीर है। यह शरीर को धारण करने वाला पंच महाभूत है। ये पंच महाभूत को भी धारण करने वाले पंच तन मात्रा है जिससे यह स्थूल शरीर बना हुआ है पंचभूतात्मक। तो ये पंच तन मात्रा है उसको भी धारण करने वाला यह आत्मा है। स्वामी जी आपको कैसे मालूम? उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण के अलावा और कोई प्रमाण मैं भी नहीं दे पाऊंगा। विज्ञान की तो बात बहुत दूर रही, इसलिए यहां धर्म्यम उपदेश का अर्थ है जो सबको धारण करे। ध्रुव धारयति ही धर्म, सबको जो धारण कर रहा है, सबको सत्ता और स्फूर्ति जो दे रहा है, जिसकी वजह से ही सब अपना अस्तित्व टिका रहे हैं, वह है आत्मा। और उसका उपदेश कहा है, देखिए एक है आदेश, दूसरा है उपदेश। आदेश में आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, आदेश में ऐसी बात है ये कर डालो, मतलब हमको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। महाराज जी ने कहा हमें करना है, कुछ पूछना नहीं है, कर डालो। उपदेश उससे भिन्न है। उपदेश में क्या है? आचार्य ने, सद्गुरु ने कहा, सामने वाले ने सुना, सुनने के बाद उसके दिमाग में अंदर विचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं उपदेश। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, शास्त्र कह रहा है इसलिए भी मत मानना, लेकिन तुम भी अपने दिमाग से सोचो क्या यह मैं कह रहा हूं और शास्त्र कह रहा है सही है। शंका करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, जिज्ञासा होनी ही चाहिए। सब शास्त्र ने कह लिया मत स्वीकार करना, सोचना उसके ऊपर। तो ये उपदेश की प्रक्रिया कैसी है? आचार्य सद्गुरु कहता है और सुनने वाले के दिमाग के अंदर विचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक यह विचार की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक यह ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा है उद्रेदात्मनात्मानम्, आपका उद्धार आपको ही करना है। गुरु अवश्य मदद करेगा आपको, शास्त्र भी आपको मदद करेगा, लेकिन आखिर चलना तो आपको ही है। इसीलिए उपदेश आपने सुना, विचार की प्रक्रिया आपके दिमाग में शुरू हो जानी चाहिए। वो क्यों प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों? तो उपदेश की प्रक्रिया में ऐसी बात है। यह उपदेश सुनकर, पढ़कर नहीं, पढ़कर नहीं कहा यमराज ने, श्रुत्वा कहा। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं सीडी मिलती है बाजार में, अब तो इंटरनेट के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है, यूट्यूब के ऊपर तो सब महात्माओं के प्रवचन मिलते हैं, और रास्ते में पुस्तक खरीद लेंगे और पढ़ लेंगे, ज्ञान हो जाएगा। पढ़ने से अगर होता तो ये प्रेमपुरी आश्रम नहीं होता, यहां सिर्फ लाइब्रेरी होती सब मंजिलों में। क्यों? पढ़ने से ज्ञान होता है, लेकिन पढ़ने से नहीं। हां, अध्ययन अध्यापन वगैरह आवश्यक तो है, उसमें भी थोड़ा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन श्रवण कहा है, सुनकर ही होगा। और किससे? आचार्य, आचार्य प्रसादात। अर्जुन ने भी सुना भगवान श्री कृष्ण से, नचिकेत भी अभी सुन रहा है यमराज से। आप लोग इस वक्त इस स्वामी से सुन रहे हो, यह सुनकर ही होता है। लेकिन स्वामी जी जिसके दोनों श्रवण इंद्रियां काम नहीं कर रही है उसका क्या, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। महात्मा के दर्शन अवश्य हो पाएंगे, मूर्ति के दर्शन अवश्य हो पाएंगे, क्योंकि यह जो है शास्त्र का तत्व ज्ञान वह सुनकर ही होगा। इसलिए कहा मर्त्यः एतत् धर्म्यम् श्रुत्वा संपरिगृह्य। संपरिगृह्य एक है गृह्य, गृह्य माने ग्रहण करना, और बाद में कहा परिगृह्य, प्रीफिक्स रखा वहां, और उसके आगे और रखा संपरिगृह्य, मतलब दो प्रीफिक्स रखे उन्होंने, गृह्य परिगृह्य संपरिगृह्य, मतलब ग्रहण तो किया, फिर बाद में आता है शब्द परि, जैसे हम कहते हैं परिक्रमा, अपभ्रंश में बोलते हैं परकम्मा, लेकिन वास्तव में परिक्रमा है। परिक्रमा माने चारों ओर से, जो सुना हमने उसके ऊपर विचार चारों ओर से होना चाहिए, जिसे शास्त्र की भाषा में कहे तो श्रवण, और बाद में आता है मनन। मनन है वह यहां संपरिगृह्य, दिमाग में उतरा तो सही लेकिन उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। क्यों? कल कोई आकर ऐसा न कहे कि भाई अद्वैतवाद गलत है, द्वैतवाद ही सही है। हां इसकी बात सही है, नरसिंह मेहता ने दर्शन किए थे, मीराबाई ने दर्शन किया था, इसकी बात सही लगती है। तो आपने पहले जो सुना वह खत्म हो गया, फिर बाद में और कोई आएगा ये सब दर्शन की बात छोड़ो, राम नाम जपो, कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शास्त्र में ही है कलयुग में तो सिर्फ हरि नाम, ये सब पढ़ना पढ़ाना माथापच्ची करना ये छोड़ दो। हां इसकी बात सही, मतलब वह जो आदमी है उसका कहीं ठिकाना नहीं है, मुरादाबादी ग्लास जैसा, यहां भी लुढ़के उसका कोई ठिकाना नहीं। तो परिगृह्य का अर्थ हमने अभी देखा, जो सुना उसके ऊपर विचार होना चाहिए। इसी बात को शास्त्र में कहा उहा पोह विचक्षण, सुनने वाला कैसा होना चाहिए, उहा पोह, उसके दिमाग में खलबली होनी चाहिए कि क्या यह जो मैंने सुना सही है, मेरे अनुभव में मेरी बुद्धि में बैठता है क्या। इसलिए कहा उहा पोह, शिष्य के लक्षण बताए हैं मेरे चुड़ाने के अंदर, फिर उसके आगे रखा सम परिगृह्य। सम या माने अच्छी तरह से चारों ओर से विचार करके, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है तो वह व्यक्ति जिसने यह सुना हुआ है तत्वज्ञान उसको छोड़ देगा। शास्त्र में एक स्थाणु निखन न्याय आता है, जैसे हम स्कूल के टाइम में खो खो खेलते थे, दो खंभे होते हैं तो हमको भी लगा देते हैं टीचर, चलो यहां खोदो, टीचर खड़े रहते थे, थोड़ा खोदते थे, इतना बड़ा खंभा था वो हमको लगाना था, तो पहले वो जो ईंटे हैं उसके टुकड़े कर डाले जाते हैं उसके ऊपर खंभा, फिर बाद में हिलाओ, हिलाने के बाद में जगह होगी और डालो, हिलाओ और डालो, हिलाओ हिलाओ, एक नौबत ऐसी आएगी वह खंभा पक्का हो जाएगा, हिलेगा नहीं। बस वैसी ही बात है, श्रवण करने के बाद हमारे मन में सब कुछ हिलना चाहिए, जैसे खंभा हिलता है बस वैसे हिलना चाहिए, फिर एक नौबत ऐसी आएगी कि यह जो शास्त्र में आत्मतत्व की बात कही है सही है, वह आपको फिर कोई नहीं हिला पाएगा, कोई व्यक्ति अगर द्वैत की बात करेगा तो हां द्वैत भी उपाधि के दृष्टिकोण से सही है, यह आप समझेंगे। कोई कहेगा कि नहीं भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति, हां सही है, अनन्य भक्ति से जिसे हम निधिध्यासन कहते हैं उससे भगवान की प्राप्ति होती है, अब वो हिलेगा नहीं। कोई कहेगा कलयुग में नाम स्मरण से ही हो जाएगा, हां नाम स्मरण अंतकरण की शुद्धि के लिए कलयुग में सही है क्योंकि कलयुग में यज्ञ याग क्रिया समाप्त हो जाएगी तो उस वक्त अंतकरण की शुद्धि के साधन के लिए सिर्फ एक ही है, वह है हरि नाम। ये कब पता चलेगा उसको, जब उसका खंभा जो है दिमाग का खंभा पक्का हो जाएगा। इसलिए कहा संपरिगृह्य, फिर उसके बाद में कहा प्रवृह्य। प्रवृह्य, प्रवृह्य का अर्थ है सरल भाषा में निधिध्यासन जिसे हम कहते हैं, वह भी शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। जैसे पंचकोश विवेक प्रक्रिया है दृष्टांत के तौर पे, और भी अनेक सारी प्रक्रिया है, सत्य मिथ्या प्रक्रिया है, अवस्था त्रय प्रक्रिया है, शरीर त्रय प्रक्रिया है, यह सब प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पहले निधिध्यासन के वक्त प्रक्रिया का उपयोग किया फिर बाद में छोड़ दिया। जैसे ये माइक का मैंने उपयोग किया यह आपको समझाने के लिए, फिर जब टाइम होगा तब छोड़ देंगे। शरीर का भी हमने उपयोग किया, फिर ज्ञान हो गया, अब शरीर को छोड़ना नहीं है चाकू लगा के, शरीर तो अपने आप समाप्त होगा। तो यहां शास्त्र में प्रक्रिया का पहले स्वीकार किया गया है, इसको कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से यह आत्मतत्व समझाया जाता है, क्यों वह प्रक्रिया है। जैसे स्कूल में अल्फा बीटा थीटा ऐसा कहते हैं, मान लीजिए एक्स की कीमत 5 है, हम क्यों माने, अगर कोई स्टूडेंट ने ऐसा हम क्यों माने, तो टीचर क्या कहेगा, ऐसा कर बैग लेके घर चला जा, पहले मानना पड़ता है तभी आगे बात चलेगी, बस वैसी ही बात है। तो पंचकोश की दृष्टांत के तौर पे हम देखें, पंचकोश की प्रक्रिया है क्या है, यह सबसे पहले यह शरीर मैं हूं ऐसा विचार करना चाहिए। स्वामी जी सभी लोग विचार तो करते ही है ना, मैं शरीर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। शरीर के ऊपर जो कपड़ा है उस कपड़े को आपने किसी का स्पर्श कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, क्यों मुझे स्पर्श किया, स्पर्श किसको हुआ है, कपड़े का स्पर्श हुआ है, गहने को स्पर्श किया है, घड़ी को स्पर्श किया है, फिर भी लोग क्या सोचेंगे, मुझे स्पर्श किया। तो सबसे पहले शरीर का विचार आएगा जिसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश से मैं भिन्न हूं, यह विचार की प्रक्रिया है, क्यों जो जो भी दृश्य है वह दृष्टा नहीं हो सकता। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मैं नहीं हो सकता, मैं माने स्वामी जी, स्वामी जी अंदर तो बहुत इच्छा है लेकिन क्या करें, अब अगले जन्म में करेंगे। अगर दृष्टा दृश्य को देखे और अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि दृष्टा दृश्य हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, नीचे उतरेंगे और गलती से गधे को देख लिया। अच्छा हम लोग गधे नहीं हो रहे, इसलिए जो दृश्य है उससे भिन्न दृष्टा है। यह शरीर हमारे लिए दृश्य है, हम लोग देख रहे हैं, पीछे नहीं देखा जा सकता, हां कांच में हम देख सकते हैं। जो दृश्य है उससे भिन्न दृष्टा है, यह है अन्नमय कोश का मैं साक्षी हूं। तो कौन है अन्नमय से सूक्ष्म, कौन है, तो कहता है उपनिषद अन्योन्तर आत्मा प्राणमय तेनैष पूर्ण। ये अन्नमय कोष यानी ये शरीर है, उसे चलाने वाला वह है प्राणमय कोष। प्राण न हो तो यह शरीर चलेगा नहीं। जैसे कुछ ग्रहण करना होता है, अब ये हाथ कांप रहे हैं, क्यों? वहां प्राण शक्ति कार्य नहीं कर रही है। प्राण शक्ति से यानी प्राणमय कोष से भी एक सूक्ष्म आत्मा है, अन्योन्तर आत्मा मनोमय। मन और मन जो है वह प्राण से भी सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि प्राण की गति तो सिर्फ शरीर में और शरीर तो थोड़ी बाहर, और मन कैसा है आपको मालूम है, आंख करके बंद करके बैठे ध्यान करने को मन कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन ही आत्मा है? नहीं नहीं, मन ही आत्मा नहीं है, मन से भी एक सूक्ष्म आत्मा है। अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय तेनैष पूर्ण। विज्ञानमय माने मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वह उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। अच्छा, अब पता चला यह बुद्धि ही आत्मा है? नहीं नहीं नहीं, उपनिषद कहता है अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। अच्छा, जो आनंदमय कोष है वह ही आत्मा है? नहीं, वह ही उत्पन्न होने वाला है, नाश होने वाला है। आनंदमय कोष के भी तीन वृत्तियां हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। जैसे सेल लगा हुआ है साड़ियों का 25%, 50% और शोकेस में आपने देखा, हाँ ये साड़ी मेरे लिए अच्छी है। यह जो वृत्ति आपके दिमाग में हुई, विचार जो आपके दिमाग में उद्भूत हुआ, उसे कहते हैं प्रिय वृत्ति। लेकिन जेब में पैसे नहीं है, 31 तारीख आने दो, पगार होगा तब लेंगे, ठीक है। रोज वहां से घूमते हैं, जाते हैं, हां अभी साड़ी है, चलो अच्छी बात है, किसी ने ली नहीं है। हफ्ते से उस दुकान के आसपास आप चक्कर काट रहे हो, प्रिय वृत्ति शुरू हो रही है। हाथ में आया, हां आपके हस्बैंड ने आपको दिया गिफ्ट के तौर पे, अब वो हाथ में आया, अब मोद वृत्ति। पहले तो थोड़ी दूर थी साड़ी, अब कहां आ गई, हाथ में, बक्से के अंदर, मोद वृत्ति हुई, उससे और ज्यादा सुख हुआ, आनंद हुआ। फिर जब पार्टी में जा रहे तो पहन के बाहर निकले, वह है प्रमोद वृत्ति। यह जो है प्रिय, मोद और प्रमोद, यह जो वृत्ति या विचार है वह भी आनंदमय कोष का है। वह साक्षात ब्रह्मानंद नहीं है, लेकिन लोग क्या समझ बैठते हैं, ये आनंदमय कोष ही आत्मा है। लेकिन आनंदमय कोष से भी एक उत्तम आत्मा है, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति।